अब हम मराठास के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर में मराठास का क्या रोल था, उन्होंने क्या किया है, मराठास कहाँ से थे और मराठास कैसे राइज हुए और कैसे मराठास जो हैं एक ट्रबल मेकर्स बन गए मुगल एम्पायर के लिए। हम देखते हैं कि मराठास जो हैं छोटे से चीफ्टन्स थे जो डेक्कन के किंगडम्स के अंडर आते थे और काफ़ी सारे जो थे वो ऑफिसर्स थे इनके किंगडम्स में, डेक्कन के किंगडम्स में, और स्पेशली कुछ डेक्कन्स के अंडर काम कर रहे थे, कुछ मुगल्स के अंडर भी काम कर रहे थे। जब हम डेक्कन किंगडम्स को देखते हैं, जब मराठास ने ये चीज़ देखी कि डेक्कन किंगडम्स में बार बार अटैक हो रहे हैं मुगल्स की तरफ से, तो उन्होंने सोचा कि हमारा अलग हो जाना ही बेटर है, क्योंकि अगर ये पिसेंगे, डेक्कन के किंगडम्स पिसेंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी पिस जाएंगे इसमें। तो दे वॉन्टेड टू रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन and they did this the same thing and they gathered bands of soldiers around them and begin defying the authority of the Deccan kingdoms and उन्होंने ये बहुत आसानी से कर लिया क्योंकि जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे वो लोग बहुत स्ट्रांग थे, स्पेशली द रीजन अराउंड पूना एंड कॉनकन रीजन, ये सारे हिली एरियाज थे एंड हिल्स में उनको पता था कि कैसे छुपना है, और जब भी किसी आर्मी को भेजा जाता था उनके अगेंस्ट तो वो गुरिल्ला वारफेयर की टेक्निक्स यूज़ करके भाग लेते थे और हमेशा मुगल आर्मीज़ को हरास करते थे। एंड ग्रेजुअली दीज मराठास बिकेम वेरी स्ट्रांग एंड उन्होंने लोकल किंगडम्स को तो डिफाई किया ही किया, लेकिन आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड डिफाइंग द मुगल्स टू। और जो मोस्ट पावरफुल मराठा रूलर रहे हैं दैट वाज शिवाजी एंड हिज फादर वाज अ फ्यूडेटरी ऑफ बीजापुर एंड उन्होंने काफ़ी साल जो है बीजापुर आर्मी में सर्व किया था। बट शिवाजी तो जो थे ही वॉज वेरी एम्बिशियस एंड ये जो वीकनेस उन्होंने देखी बीजापुर की ही asserted his independence। और जो किंग था बीजापुर का उसने अपने एक जनरल को भेजा अगेंस्ट हिम और जनरल का नाम था अफजल खान, उसको भेजा शिवाजी के अगेंस्ट बट शिवाजी ने उसको मार दिया अफजल खान को। उसके बाद औरंगजेब ने एक और अपना ऑफिसर भेजा जिसका नाम था जय सिंह ताकि वो शिवाजी के साथ डील कर सके, लेकिन शिवाजी जो जय सिंह था ही वॉज़ वेरी कीन दैट देर शुड बी अ ट्रीटी बिटवीन मुगल्स एंड द मराठास, बिकॉज उसको अभी ये रियलाइज़ हो गया था कि मराठास जो हैं वो बहुत पावरफुल बन चुके हैं अंडर द शिवाजी। एंड शिवाजी वॉज परसुएडेड बाय जय सिंह टू गो टू औरंगजेब कोर्ट। शिवाजी को परसुएड किया जय सिंह ने कि तुम एक बार उनसे मिलो, औरंगजेब से मिलो। एंड जो शिवाजी के मैनर्स थे वो इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट को चाहता था कि उसके जो मैनर्स थे वो औरंगज़ेब को बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसीलिए औरंगज़ेब ने शिवाजी को इम्प्रिजन कर लिया, वहीं पे बंदी बना लिया। बट शिवाजी बहुत क्लेवर थे एंड ही एस्केप्ड फ्रॉम दैट सिचुएशन टू। एंड अब तो उनको ज़्यादा ही डिटर्मिनेशन आ गई कि अब मुझे मुगल्स ने हरास किया है, अपने कोर्ट में बुला के फिर बंदी बना लिया, बात करने को बुलाया था बट बात हुई नहीं, तो उसको ये हरासमेंट लगी एंड शिवाजी डिसाइडेड कि अब तो मैं मुगल से बदला लूँगा और he declared himself as an independent ruler of the Maratha kingdom and was crowned in 1674। शिवाजी ने अपने आप को declare कर दिया मराठास का ruler और इन इसके आगे के आने वाले सब years में जब तक शिवाजी की death होती है 1680 में शिवाजी के बाद शिवाजी की डेथ तक उसने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मुगल एम्पायर को चैलेंज करने वाला मराठा स्टेट खड़ा कर दिया था। एंड शिवाजी ये कर पाए बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस। पहला ये था कि जितना भी कंट्रोल था मुगल्स का डेक्कन के ऊपर वो अब तक काफ़ी वीक हो चुका था और जो मुगल गवर्नमेंट थी दैट वाज अनेबल टू स्टॉप द रिवॉल्ट्स, और जो भी चीफ्स उनके खिलाफ रिवॉल्ट्स कर रहे थे वो मुगल्स दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल एनी ऑफ द रिवॉल्ट्स। और दूसरी चीज़ ये हुई कि मराठास ने अपने रेवेन्यू सिस्टम पे काफ़ी वर्क किया था और जिसकी वजह से दे वर गेटिंग लार्ज रेवेन्यू एंड कुड मेंटेन लार्ज आर्मीज। सो मराठा स्टेट वॉज गवर्न बाय द किंग हु वॉज एडवाइज एंड असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ एट मिनिस्टर्स। जो मराठा स्टेट थी इट वॉज गवर्न बाय अ किंग, लेकिन किंग वॉज ऑल्सो एडवाइज एंड असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ एट मिनिस्टर्स। आठ ऐसे मिनिस्टर्स थे जो किंग को हर चीज़ पे एडवाइस देते थे। एंड इस मिनिस्ट्रियल सेटअप का नाम जो था दैट वॉज अष्टा प्रधान, दैट वॉज 8 मिनिस्टर्स, एंड जो भी रेवेन्यू आता था स्टेट का वो मोस्टली लैंड से आता था. स्टेट वॉज एंटाइटल्ड टू 2/5 ऑफ द प्रोड्यूस, एंड जो स्टेट है उसको 2/5 ऑफ द प्रोड्यूस मिलेगा. लेकिन हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि पीजन से कितना कलेक्ट होता था. ये जो असेसमेंट है पीजेंस पे और कल्टिवेटर्स पे, उनकी असेसमेंट है 2/5 ऑफ द लैंड रेवेन्यू जो कि मराठा किंगडम में रहते थे. और जो मराठा किंगडम के बाहर रहते थे लोग, उन पे जो है मराठास जो हैं दो तरीके के टैक्सेस उनसे कलेक्ट करते थे. वन वॉज कॉल्ड द चौथ एंड द अदर वन वॉज सरदेशमुखी. जो चौथ है इट वॉज 1/4 of the total revenue paid to the Mughal government. और द डेक्कन किंगडम अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो एरिया है ये मुगल्स के अंडर नहीं आता डायरेक्टली, लेकिन वहाँ से भी मुगल सॉरी मराठास के अंडर नहीं आता है डायरेक्टली, बट वहाँ से भी मराठास टैक्स कलेक्ट करते थे. दैट वॉज चौथ. और उसके बाद हम बात करेंगे ये जो चौथ था, दिस वॉज अ टैक्स विच द मराठा गवर्नमेंट टुक इन टर्न फॉर प्रॉमिसिंग नॉट टू प्लंडर एंड रेड देयर टेरिटरी. तो चौथ इस चक्कर में दिया जाता था कि भाई हम तुम्हारी टेरिटरी में आके प्लंडरिंग और लूटिंग नहीं करेंगे, तो इसलिए तुम हमें पैसा दो, एक रेवेन्यू प्रोवाइड करो. और जो दूसरा टैक्स था सरदेशमुखी, वो एडिशनल था टैक्स एंड एडिशनल 1/10 था. और जो पीजेंस थे जो आउटसाइड द मराठा किंगडम रहते थे, उनको थोड़ा एडिशनल बर्डन बियर करना पड़ता था मराठास की पॉलिसीज़ की वजह से. एंड ये जितना भी पैसा था ये उन्होंने यूज़ किया एक स्ट्रॉन्ग मराठा स्टेट बनाने में. इससे ये भी पता चलता है कि जो मुगल गवर्नमेंट है वो डेक्कन में कहीं ना कहीं वीक थी. उसके बाद जो सक्सेसर्स आए हैं शिवाजी के, वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे, एक्सेप्ट फॉर द क्वीन ताराबाई जो रीजेंट की तरह जिसने काम किया, जिसका बेटा बहुत छोटा था इसलिए शी एक्टेड एज अ रीजेंट रूलर. एंड लेकिन रूलर्स इतने ज़्यादा वीक थे गवर्नमेंट के कि जो ये है ताराबाई के भी टाइम पे ग्रेजुअली जो है गवर्नमेंट पेशवास के हाथ में चली जाती है. एंड कुछ ब्राह्मण मिनिस्टर्स थे स्टेट के, दे वर बिकमिंग वेरी पावरफुल. एंड एज लॉन्ग एज औरंगज़ेब ने रूल किया, मुगल्स ने मैनेज किया था कुछ हद तक ताकि वो कंट्रोल कर पाए मराठास को. लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो हम देखते हैं कि मराठास जो हैं दे रोज इन ग्रेट स्ट्रेंथ एंड बिकेम अ डोमिनेंट पावर इन इंडिया. सो दे स्टार्टेड, उनकी पावर तभी से बढ़ना शुरू हो गई थी जब डेक्कन में मुगल का कंट्रोल जो है धीरे धीरे लूज हुआ. उसके बाद मराठास ने अपनी पावर स्ट्रेंथन कर ली. मराठास सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं थी मुगल्स के लिए, देयर अदर्स ऑल्सो, और भी रिवॉल्व्स हुए हैं मुगल एम्पायर में. स्पेशली अगर हम औरंगज़ेब की बात करें तो औरंगज़ेब के रेन में बहुत सारे रिवॉल्व्स हुए हैं. एंड कुछ जो रिवॉल्व्स हैं वो पीजेंस ने सपोर्ट किया था राजा महाराजाओं को, छोटे छोटे रूलर्स को पीजेंस ने भी सपोर्ट किया है किसी किसी रिवॉल्ट में. स्पेशली जो जाट्स हैं मथुरा के, उन्होंने रीबेल किया. एंड पीजेंस इसलिए कंप्लेन कर रहे थे कि उनके ऊपर जो टैक्स लगता था जो अभी तक 1/3 था अकबर के टाइम पे, वो अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट हाफ कर दिया था, लाइक बढ़ा दिया था बहुत ज़्यादा. तो ये उनके लिए बहुत टैक्स हैवी हो गया था टू बियर दिस बर्डन, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम. एंड औरंगज़ेब फिर भी टैक्स रिड्यूस नहीं कर पाया बिकॉज उसको अपनी आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए था. और जो मुगल आर्मीज़ थी दे वर नाउ फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन डेक्कन. और जो कैंपेन्स हुए अगेंस्ट बीजापुर या गोलकंडा वो ईयर्स तक चले हैं, उसमें बहुत पैसा गया है. और ये जो दोनों किंगडम्स थे फाइनली 1686 और 1687 में एनेक्स हुए. बट हम औरंगज़ेब की बात करें तो औरंगज़ेब के और ट्रबल्स होने लग गए थे राजपूत के साथ. रूलर ऑफ मेवार, मारवार, दो मेजर किंगडम्स थे राजस्थान के दैट केम इन कन्फ्लिक्ट विद औरंगज़ेब. और मैटर्स और वर्स हो जाते हैं जब मुगल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई बहुत सारे कैंपेन्स में जो कि उन्होंने सिक्स के अगेंस्ट किए हैं. एंड दिस वॉज अ बैड थिंग बिकॉज पंजाब वॉज अ वेरी रिच एरिया एंड प्रोवाइडेड अ फेयर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू द मुगल एम्पायर. बट देन जब इनके रिवॉल्व सिक्स के साथ होने लग गए तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई थी मुगल एम्पायर के लिए. एंड जो प्रॉब्लम अबाउट टैक्सेस गॉट एंटेंगल्ड विद रिलीजियस प्रॉब्लम्स एज वेल बिकॉज वहाँ पे सिख और इस्लाम का वैसा वाला चैप्टर शुरू हो गया था जब सिक्स के साथ प्रॉब्लम शुरू हुई. अगर हम सिक्स के साथ प्रॉब्लम की बात करें तो सिख वो लोग थे जो गुरु नानक के फॉलोअर्स थे. एंड उनका एक नया रिलीजन था जो जो वो मानते थे. एंड 17 सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो सिखिज्म है वो एक रिलीजन के रूप में सामने आया. पीजन्स का रिलीजन, स्पेशली आर्टिसन्स का रिलीजन जो पंजाब के एरिया में रहते थे. एंड गुरु नानक वॉज सक्सीडेड बाय 9 गुरुज, राइट. द अर्लियर वंस कंसनट्रेटेड मेनली ऑन द रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिखिज्म. जो स्टार्टिंग के गुरुज थे उन्होंने सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिखिज्म पे जोर दिया, लेकिन ग्रेजुअली जो ये गुरुज हैं वो मिलिट्री लीडर्स बन जाते हैं बाद में सिक्स के. और जब डेथ हो जाती है 7th गुरु की, औरंगजेब ने ट्राई किया कि वो जो ये डिफरेंसेस हैं ओवर द सक्सेशन ऑफ द नेक्स्ट गुरु, इस चीज़ का फ़ायदा उठाए. 7th गुरु के डेथ के बाद जब 8th गुरु के सक्सेशन की बारी आई तो औरंगजेब को लगा कि ये सिक्स के लिए थोड़ा वीक प्लेस है. उस टाइम आप उनको ये अपॉर्चुनिटी उसको लगी कि ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिक्स की पावर उस टाइम पे बहुत बढ़ रही थी. तो इस पावर को कर्व करने के लिए जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन थी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया तेज बहादुर के एग्जीक्यूशन का 1675 में. और नेचुरली इसके बाद जो हो गया, जो सिख थे दे गॉट वेरी एंग्री विद द मुगल्स. सो जब 10th एंड लास्ट गुरु द 10th और लास्ट गुरु जो हैं गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने आर्मी ऑर्गेनाइज की, सोल्जर्स को ऑर्गेनाइज किया, उनको एक बैटल के लिए तैयार किया. और बैटल स्पेशली किसके अगेंस्ट थी? मुगल्स के अगेंस्ट थी. एंड सिक्स ने एक टर्म यूज़ की, नई टर्म थी, दैट वॉज खालसा एंड इट मेंट प्योर. दे वर ऑर्गेनाइज एज फाइटिंग ग्रुप्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गोविंद सिंह एंड सोल्जर्स फ्रॉम अफगानिस्तान तान वर ऑल्सो रिक्रूटेड इन द सिख आर्मीज. अगर हम मराठास की बात करें तो सिख ने भी बहुत सारे रेड्स कंडक्ट किए बहुत सारी जगहों पर, बट सिक्स वर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्टेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, जैसे मराठास ने कर लिया था. एंड दिस द सिक्स अचीव्ड इन द 18th सेंचुरी. ये सब कुछ उन्होंने जो किया 18th सेंचुरी में किया. सो जो रिलीजियस मूवमेंट की तरह शुरू हुआ था सिखिज्म, वो धीरे धीरे पॉलिटिकल होने लग गया. एंड मुगल गवर्नमेंट वाज नॉट स्ट्रांग इनफ टू सप्रेस द सिख रिवॉल्ट. मुगल गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो उनको सप्रेस कर पाती. और अगर 18th सेंचुरी की बात करें, मुगल्स बहुत वीक हो गए थे एंड एवरीवन वाज ग्रैबिंग द टेरिटरीज, जहाँ पे जिसको दिख रहा था कि हाँ यहाँ से हम कुछ फ़ायदा ले सकते हैं. एवरीबडी वॉज डूइंग दैट. द सिक्स चीफटेंस ऑल्सो सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम रूलर्स ऑफ स्मॉल स्टेट्स. तो सिक्स भी छोटे छोटे स्टेट्स के रूलर्स बन गए. और औरंगजेब की प्रॉब्लम्स जो थी पोर्चुगीज़ के साथ और इंग्लिश पोर्चुगीज़ पायरेट्स के साथ, वो फिर से शुरू हो जाती हैं बे ऑफ बंगाल के एरिया में. एंड इस टाइम पे उन्होंने अपने बेस कैंप के लिए यूज़ किया था चिट्टागोंग को. सो द मुगल आर्मीज उनके खिलाफ भेजा गया, पोर्चुगीज़ के खिलाफ मुगल आर्मीज़ को भेजा गया. एंड ये आर्मीज़ दे वर सक्सेसफुल, दे नॉट ओनली कैप्चर्ड चिट्टागोंग बट ऑल्सो एनेक्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल. उन्होंने काफ़ी हद तक उनकी जो ये ट्रबल मेकिंग एक्टिविटीज थी इनको डिफीट किया. एंड दे इवन कैप्चर चिट्टागोंग. और जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का एट दैट टाइम वो भी थ्रेटन हो रहा था बिकॉज इंग्लिश पायरेट्स बार बार अटैक कर रहे थे इंडियन शिप्स पे. और इससे क्या हुआ कि जो मुगल गवर्नमेंट थी वो बहुत गुस्से में आ गई. एंड देर वॉज एन इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत जहाँ से इंग्लिश ट्रेडेड विद इंडिया. सो मुगल गवर्नमेंट ने थ्रेटन किया कि अगर आप ये इंग्लिश पायरेट्स को ख़त्म नहीं करोगे या उनको स्टॉप नहीं करोगे तो उनको एक फ़ाइन देना पड़ेगा. और उन्होंने फ़ाइन दिया 1.5 लाख ऑफ रुपीज़. और गवर्नमेंट तब तक अलाउ नहीं करेगी जब तक आप ये फ़ाइन भरोगे नहीं. एंड इससे थोड़े इंग्लिश डर गए थे, उन्होंने फ़ाइन दे दिया और पायरेट्स को बंद करा दी, पायरेट्स की एक्टिविटीज़ जो वेस्टर्न कोस्ट में होती थी. अगर हम लेटर पार्ट ऑफ औरंगजेब का देखेंगे तो मुगल एम्पायर वॉज नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग जितना स्ट्रॉन्ग वो अकबर के अंडर था. इनफैक्ट एम्पायर वॉज बिगिनिंग टू ब्रेक अप. लेकिन औरंगजेब वॉज नॉट रियली अवेयर ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग इन हिज एम्पायर. और मैटर्स और वर्स हो जाते हैं वेन ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ग्रुप एंड ही डिसाइडेड दैट ही वुड रूल इन अकॉर्डिंग विद द लॉज ऑफ इस्लाम. तो वो इतना ज़्यादा मानने लग गया ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स को कि उसने सोचा कि मैं अब इस्लाम के लॉज के अकॉर्डिंग रूल करूँगा. एंड दिस वॉज अ पॉलिसी डिफरेंट फ्राम ऑल हिज एंसेस्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे एंड लिबरल रूलर्स थे. और बिसाइड्स इट वॉज अ रॉन्ग पॉलिसी एट दैट टाइम बिकॉज इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग रहते थे. एंड स्पेशली इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग रहते थे, बहुत सारी तरह के लोग रहते थे. तो दिस टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्सी how could have this type of orthodoxy would have worked? This was not possible. So Aurangzeb did not understand the problem of India as our Akbar has done. So Aurangzeb failed in certain kind of things, especially the religious policy of Aurangzeb, if we talk about. Now we will talk about the religion of the Mughal court, art and architecture, and music, literature and revenue. Let's start with the religion at the Mughal court. Jo Mughal court tha 17th century mein, it was divided into two groups. Ek un logon ka group jo bahut orthodox se, ek un logon ka group jo bahut liberal the. और मुस्लिम्स जो थे इंडिया में दे स्टिल कंटिन्यूड मैनी ऑफ द ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ जो उनको लगता था इस्लाम के अकॉर्डिंग है वो वही चीज़ें फॉलो करते थे एंड काफ़ी सारे मुस्लिम्स लिबरल आइडियाज़ को भी फॉलो करते थे जो लिबरल मुस्लिम्स थे उन्होंने ट्रेडिशंस जो अकबर ने एस्टैब्लिश किए थे उनको फॉलो किया एंड most popular among the liberals was a young prince Dara Shikoh was a liberal and he followed whatever Akbar has given the teachings and he too had a brilliant mind wo extremely acche khase padha likha insaan tha Dara Shikoh aur 19 years ki age se he began to write on religion and philosophy likhna aur padhna shuru kar diya tha his best known work was the study of sufi and vedanta philosophy aur उसने दिखाया कि ये दोनों फिलॉसफीज़ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी सूफिज़म और वेदांता की जो फिलॉसफीज़ थी Dara Shikoh ने उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट किया है 1657 में एंड अगर हम बात करें अनफॉर्चुनेटली Dara Shikoh वॉज किल्ड इन द फाइट फॉर थ्रोन बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर औरंगज़ेब Dara Shikoh की डेथ हो जाती है जब औरंगज़ेब हैज़ अ फाइट विद हिम फॉर द थ्रोन और जो ऑर्थोडॉक्स लीडर्स थे मुस्लिम लीडर्स थे was शेख अहमद सरहिंदी और वो अकबर के रेन पे वहीं पे था he lived during the reign of अकबर and जहांगीर के टाइम पे भी था he was a man with a brilliant mind अगर हम शेख अहमद सरहिंदी की बात करें और एक बहुत इम्प्रेसिव टीचर था एंड इसकी जो टीचिंग्स थी उसने बहुत सारे लोगों को कोर्ट में इन्फ्लुएंस किया है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ऑल्सो एंड आफ्टर हिज डेथ ऑल्सो He established a center where his disciples and pupils continued his work. उसने एक सेंटर बनाया Although he became an orthodox Muslim, लेकिन औरंगज़ेब जो है बहुत सीरियस था अपने रिलीजियस beliefs को लेके एंड वो लग्जरी देखता था कोर्ट की तो बड़ा अपसेट हो जाता था क्योंकि वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहता था और अपनी लाइफ को रिलीजन के लिए डिवोट करना चाहता था ये जो है औरंगज़ेब वो थोड़ा अनपॉपुलर हो गया जब उसने रीइंट्रोड्यूस किया जजिया जो कि एक पोल टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स को भरना पड़ता था तो उसने ये दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया और इससे थोड़ी सी औरंगज़ेब की जो इमेज है इंडिया में वो थोड़ी ख़राब हो जाती है उसने टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया और उसने ये रियलाइज़ नहीं किया कि दिस इज़ नॉट द जॉब ऑफ अ किंग टू डू एंड किंग्स जो हैं वो ऐसे रूल नहीं करते एंड रूल करने के लिए यू डोंट नीड टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड ये भी उसको समझना चाहिए था कि हर तरीके के रिलीजन हैं और गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए रिलीजियस मैटर्स में दिस वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट वीकनेस ऑफ औरंगज़ेब वी कैन से दिस वॉज अबाउट रिलीजन एट द मुगल कोर्ट थैंक यू